नमस्कार शिक्षार्थियों, माध्यमिक स्तर का ये कार्यक्रम है और आज जिस पाठ पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है अपना पराया। जब हम शीर्षक की बात करते हैं तो हमारा जो पाठ है उसका कोई ना कोई संदेश इस शीर्षक में छुपा होता है। तो जब हम इस पाठ पर चर्चा करेंगे तो आप भली भांति समझ जाएंगे कि ये शीर्षक बहुत ही उपयुक्त है, अपना और पराया। अपना कौन है जो हमारा साथ देता है, जो हमारे लिए बेहतर सोचता है, जो हमें गलत करने से रोकता है, और पराया वो है जो हमें नुकसान पहुंचाता है और जिससे हमें दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से अपना पराया की जो परिभाषा है वो इस लेख, इस निबंध के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। सामान्यतया हमारे पाठ्यक्रम में सभी तरह की विधाएं रखी गई हैं। हमारी कहानियां हैं, कविताएं हैं, नाटक हैं, फीचर है, लेखन कौशल के भी कुछ पाठ हैं, और ये जो लेख है इसके बारे में भी विशेष बात ये है कि इसकी विधा जो है वो लेख की है और इसमें वैज्ञानिक और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारियां हमें दी गई हैं। आज जिस तरह का वातावरण हमारे आसपास देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग COVID-19 से संक्रमित हैं, कुछ लोग ठीक हो गए हैं, और हर जगह COVID-19 का प्रकोप नजर आता है। उस माहौल को देखते हुए ये पाठ जो है बहुत ही समीचीन है, बहुत ही उपयुक्त है, और इस पर चर्चा करके आप भली भांति इस बात को समझ पाएंगे कि हमारा जो स्वास्थ्य है उसका भी एक, उसकी भी एक प्रणाली है, उसकी एक प्रक्रिया है। हर कार्य के पीछे तर्क है, हर कार्य के पीछे एक व्यवस्था है। बिना व्यवस्था बहुत सारी बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं, जो इस क्षेत्र के हैं, जो चिकित्सा क्षेत्र के हैं, जो पैरामेडिकल जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, और आज जिस तरह का वातावरण है उसको देखते हुए उनका इतना बड़ा योगदान है हमारे स्वास्थ्य को कायम रखने में, हमें रोगों से बचाने में। यदि हम किसी रोग से ग्रस्त हैं तो हमारी देखभाल करने में, हमारी सेवा करने में, कि मैं समझती हूं कि हम सब उन लोगों का धन्यवाद अवश्य करें, उनके प्रति आभार व्यक्त करें। तो आज का ये पाठ भी इसी क्षेत्र से संबंधित है और इसमें बहुत ही सामान्य और बहुत ही सहज भाषा में हमें समझाया गया है कि अपना, हमारा शरीर जो है उसके लिए अपना कौन है और हमारे शरीर के लिए पराया कौन है। किस तरह से ये हमारी देह, हमारा शरीर इस बात का निर्धारण करता है कि क्या अपना है और क्या पराया है। एक उदाहरण देकर यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जब हमें कोई परिचित व्यक्ति मिलता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, हम उससे बात करते हैं और उसका कुशल मंगल पूछते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं उससे मिलकर कि इतने दिनों के बाद आए, घर पर सब ठीक हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। इस तरह से हम हर बात जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर अचानक हमारे यहाँ कोई अपरिचित आ जाए तो हम सकते में आ जाते हैं एकदम से। हमें लगता है अरे ये कौन है, कहीं ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो एक तरह से हम स्वागत करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं रहते हैं, हम एक प्रश्नात्मक मुद्रा बना लेते हैं। हाँ, क्या काम है, किस लिए आप हैं, ये जो पता है आप इसी पते पर आए हैं, हमने आपको नहीं बुलाया है, कुछ इस तरह की बातें हम करते हैं। एक तरह से हम उन्हें उनका आना हम उतनी खुली प्रवृत्ति से हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ शिक्षार्थियों, कि हमारा जो शरीर है, हमारी शरीर की जो प्रणाली है, तो उसका जो तंत्र है, उसकी जो व्यवस्था है, वो भी इस अपने और पराए की पहचान कर लेती है। और इस पाठ में इसी शरीर तंत्र की क्षमता और उसकी इस व्यवस्था का जो ढंग है, उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। तो सबसे पहले शिक्षार्थियों, हम इस चर्चा के उद्देश्य, इस कार्यक्रम के उद्देश्य हम जान लेते हैं। सबसे पहले है कि हम शरीर में होने वाले कुछ विकारों, कुछ जो गड़बड़ी है, कुछ जो अव्यवस्थाएं जो आ जाती है हमारे शरीर में, गड़बड़ियां जो हैं, उसके वैज्ञानिक कारण हम बता सकेंगे। रोगाणुओं के हमले और उनके बचाव के लिए शरीर की सुरक्षा व्यवस्था का उल्लेख कर सकेंगे। रोगों से बचाव में टीकों का क्या महत्व है, वैक्सीनेशन कराते हैं ना हम, तो उनका क्या महत्व है, इसको हम रेखांकित कर सकेंगे। बहुत सारी घातक बीमारियां हैं, जैसे एड्स है, तो ऐसी बीमारियों और उनके बचाव के क्या उपाय हैं, हम किस तरह से इन रोगों से बचे, इसका विश्लेषण कर सकेंगे। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होने वाले संक्रमणों के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकेंगे और हम बचाव के उपाय भी जान सकेंगे और उन्हें लिख सकेंगे। साहित्यिक भाषा क्या होती है और वैज्ञानिक भाषा क्या होती है, उनका अंतर भी हम स्पष्ट कर सकेंगे। तो ये शिक्षार्थियों हमारे इस कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य हैं। और इस पाठ में एक उदाहरण के माध्यम से कहा गया है कि आपकी उंगली में कभी कोई कांटा अवश्य गड़ा होगा। गड़ा, आप बताइए। मुझे तो कई बार कांटा चुभा है। अमूमन सभी के साथ ऐसा कभी न कभी अवश्य हुआ होता है कि कहीं न कहीं कोई काम करते हुए कहीं न कहीं कोई कांटा अवश्य चुभ जाता है। तो अगर वो कांटा आपकी उंगली में ही रह गया है तो आप क्या करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो आप क्या करते हैं कि उसे किसी सुई से या किसी चिमटी से आप निकाल देते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में अगर वो कांटा पूरा इस आपकी त्वचा से नहीं निकलता है तो क्या होता है, वहां पर एक गांठ बन जाती है। और ये जो गांठ है ये सूख जाती है, बहुत दर्द होता है इसमें, और फिर ये जो गांठ है ये सूख जाती है, और जब ये सूखती है तो इसके साथ ही ये कांटा निकलता है। यानी इस कांटे का निकलना बहुत ही अधिक आवश्यक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये त्वचा सूखती नहीं है, ये त्वचा जो है जहां पर कांटा गड़ा है वहां पर कोई फोड़ा बन जाता है, और वो फोड़ा बड़ा भी हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा उसमें दर्द होता है। तो जब वो फोड़ा फूटता है, जब वो चरम पर आकर फूटता है, तब उसमें से मवाद बाहर आता है, और उस मवाद के साथ ही वो कांटा बाहर आता है, और तब आपको ऐसा लगता है अब राहत मिली, अब ये कांटा जो था वो निकल गया, हमारा जो दर्द था वो चला गया। इसी तरह से एक और उदाहरण है कि आपकी आंख में कभी न कभी धूल या कोई कण ऐसा एकदम से चला जाता है कि आप एकदम आंखें बंद हो जाती हैं और आपको बहुत ज्यादा महसूस होता है कि आंख खुली नहीं रही है और आपको बहुत दर्द होता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे आंख में अगर कुछ भी चला जाए, हमारी आंखें इतनी नाजुक होती हैं कि हमारी आंखों में एकदम से पानी आ जाता है, आता है ना। तो जैसे ही वो पानी आता है तो उस पानी से वो जो कण है वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से अगर ये कण जो है, धूल का जो कण हमारी आंख में चला गया और जिससे हमारी आंख बहुत दर्द कर रही है, अगर पानी से ये कण नहीं निकलता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और आप सोचकर भी हैरान होते हैं कि एक छोटा सा कण कितना परेशान कर सकता है, क्योंकि वो हमारी आंख में चला गया है, तो इसलिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है शिक्षार्थियों, कि हमारा जो शरीर है वो प्रतिक्रिया करता है जैसे ही उस पर कोई विपत्ति आती है, जैसे ही उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ बुरा हो रहा है, तो एकदम से वो प्रतिक्रियात्मक माध्यम में आ जाता है, बिल्कुल रिएक्टिव मोड में आ जाता है, एकदम से प्रतिक्रिया होती है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ शिक्षार्थियों, हमारा शरीर पहचानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो कुछ भी, एक कण भी, एक छोटा सा कांटा भी, कुछ भी आएगा एकदम से उसको हटा देगा। अब एक और उदाहरण है कि जो छींके हैं, हम सभी को छींके आती हैं, कभी एकदम से आप किसी धूल वाले स्थान से गुजर रहे हैं, कहीं धूल बहुत ज्यादा है तो आपको एकदम छींक आ जाती है। तो हम सामान्य क्रिया मानते हैं कि हाँ, छींक आना कोई ऐसी बात नहीं कि अरे इसको छींक आ गई, ऐसा नहीं है। कभी किसी को लगातार छींके आती हैं तो हम कहते हैं कि हाँ हाँ शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको जुकाम हो गया है, इसको ठंड हो गई है, तो इसलिए इसको छींके आ रही हैं। तो एक दो अगर छींके आती हैं तो ज्यादा कुछ बात नहीं होती है, हम इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करते हैं। बहुत बार हम कुछ ऐसा परफ्यूम लगा लेते हैं, कुछ ऐसी खुशबू लगा लेते हैं, उससे अगर किसी को अच्छा नहीं लगता है, उसको कहीं ऐसा लगता है कि कुछ, उसको कह सकते हैं कि थोड़ी असमंजस सी और कुछ अलग सी स्थिति उसको महसूस होती है, तो उसको छींक आ सकती है। और छींक के साथ कई बार ऐसा भी होता है, हमारी आंख से पानी आता है, नाक से भी पानी आ सकता है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, छींक आना या नाक से पानी का बहना हमारे जो शरीर है उसकी बहुत ही स्वाभाविक प्रतिरक्षात्मक क्रियाएं हैं, जो मैं कहती हूँ ना रिएक्टिव, तो ये प्रतिरक्षात्मक प्रक्रियाएं हैं। इसके माध्यम से, इन प्रक्रियाओं के माध्यम से जो शरीर है वो जितनी भी बेमेल, जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है और शरीर से मेल नहीं खाती हैं, उन सभी पदार्थों को, चाहे वो सांस में चला गया है तो छींक आ जाएगी, त्वचा में घुस गया है तो फोड़ा आ जाएगा, और अगर आंख में चला गया है तो पानी आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारी जो प्रतिरक्षात्मक क्रियाएं हैं, इनके माध्यम से हमारा जो शरीर है वो वायु द्वारा नाक के भीतर गए हुए भी सारे पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से ये जो प्रक्रिया है, ये शरीर की सुरक्षा व्यवस्था की प्रक्रिया है। और जब शरीर अपनी सुरक्षा करता है तो एक तो जो इस तरह की वस्तुएं उस पर आ गई हैं उनसे रक्षा करता है, और साथ में ही जो बीमारियां आ जाती हैं, कोई इस तरह की शारीरिक कष्ट आ जाते हैं उनसे भी ये प्रक्रिया हमें बचाती है। तो यहाँ शिक्षार्थियों, इस लेख में आगे बताया गया है कि जो हमारा मुंह है उसमें जीभ है ना, तो ये जीभ जो है ये गेट कीपर का काम करती है, द्वारपाल का काम करती है। हम कुछ भी खाते हैं तो ये सबसे पहले जीभ उस पदार्थ का स्वाद लेती है और एक तरह से उसे जांच लेती है कि ये खाने लायक है या नहीं है। अब आप कोई दवा खाते हैं या आप कोई कड़वी वस्तु खाते हैं तो एकदम से आप रिएक्ट करते हैं, एकदम से आपको अच्छा नहीं लगता है, खाने बिल्कुल नहीं खाया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जीभ ने आपको संकेत दिया है कि ये वस्तु खाने के लिए सही नहीं है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हमारा शरीर जो है वो काम करता है। अब अगर आप खाना खा रहे हैं और उस खाने में कहीं से कोई छोटा सा भी कोई बाल अगर आ गया है तो एकदम से जीभ जो है उसे एकदम से पता चल जाता है। आपको खुद भी इस बात का अनुभव हुआ होगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है शिक्षार्थियों, कि ये जीभ का काम था कि जो भी खाने की वस्तुएं मुंह में जा रही हैं उन्हें जांचना, उन्हें उनका आकलन करना कि वो खाने लायक है या नहीं है। इससे आगे की क्या प्रक्रिया है कि जो हमारा आमाशय है या जो हमारी इंटेस्टाइन, जो हमारी अंतड़ियां हैं, ये खाने को पचाती हैं और रक्त में पहुंचाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो वस्तु हमने खाई है, जो चीज हमने खाई है, आमाशय जो है, जो हमारा पेट है जहां पर हमारा खाना हजम होता है, वो उसे कुछ सही नहीं लगता है, वो खाना उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सही नहीं है, तो वो उसे स्वीकार नहीं करता है। तो अगर जीभ ने वो खाना खा लिया है, जीभ ने ओके कर दिया कि ठीक है अब ये खाना खाया जा सकता है, हमने वो खाना खा लिया, लेकिन हमारा जो आमाशय है उसने उस खाने को स्वीकार नहीं किया कि ये खाना हजम होने वाला नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो स्वीकार नहीं कर रहा है तो हमें उल्टी हो जाती है, हम उल्टी करके वो जो भी हमने ऐसा खाया है वो एकदम से बाहर निकल जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि आप अगर कोई इस तरह का दूषित या गंदे हाथों से आपने कोई खाना खा लिया है तो इस तरह से आपको कहीं आपकी तबीयत खराब हो जाती है, और अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताते हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द था और मुझे फिर उल्टी हुई और उसके बाद मुझे राहत हुई। यानी शरीर ने अपनी जो प्रतिरक्षात्मक क्रिया थी वो की और उस खाने को बाहर निकाल दिया। तो इस तरह से आप देखें तो हमारा जो पेट है वो भी एक तरह से द्वारपाल का काम करता है। अब शिक्षार्थियों, ये जितनी भी हमारी रिएक्शंस हैं, जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं, ये एक तरह से शरीर की सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं तो हैं कि शरीर को जैसे ही लगता है कि ये वस्तु ठीक नहीं है, ये हानिकर है, तो वो उसे शरीर में जाने से रोक देती है। और इस तरह से शरीर काम करता है कि कोई भी अनचाही वस्तु अंदर ना चली जाए, और अगर गलती से वो वस्तु चली गई है तो उसे शरीर से वो बाहर निकाल फेंके। तो इस मतलब हमने सामान्य तौर पर शिक्षार्थियों इस तरह की बात शायद सोची थी, मुझे नहीं लगता आपने शायद सोची हो, लेकिन जब पहली बार मैंने ये पाठ पढ़ा था तो मुझे भी बहुत अचरज हुआ था कि किस तरह से शरीर मतलब कितना बुद्धिमानी से ये कार्य हो रहा है, कितना तर्क से ये काम हो रहा है कि ये चीज ठीक है तो खाने देनी है, ये चीज ठीक नहीं है तो एकदम से संकेत मिलता है हमें कि इस खाने में बाल है, ये खाना कड़वा है या ये वस्तु खाई नहीं जानी चाहिए। और अगर फिर भी हम कोई वस्तु ऐसी खा लेते हैं तो हमें उल्टी हो जाती है। तो कितनी अनोखी व्यवस्था है ये। अब शिक्षार्थियों हम बात करते हैं वातावरण की, कि वातावरण में जो रोगाणु होते हैं शरीर उनसे किस तरह से लड़ता है। अब जिस तरह का वातावरण हमारे आसपास बना हुआ है, महानगरों में आप रहते हैं तो आप देखिए कि हवा में कितना धुआं है, कितना प्रदूषण आपको नजर आएगा। आप थोड़ी देर बाहर रह लीजिए, आपकी आंखों में बहुत ही अधिक दर्द होने लग जाएगा, कुछ जलन जैसा महसूस होगा, आपको अपनी सांसों में इस तरह की जलन महसूस होगी। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ शिक्षार्थियों, कि इस प्रदूषण में बहुत सारे रोगाणु भी होते हैं और किसी न किसी रूप में ये रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें एक सहारा भी मिल जाए और साथ में उन्हें खाना भी मिलता रहेगा हमारे शरीर से। तो वे शरीर के जो ऊतक हैं, जो टिश्यूज हैं, उनको खा खा कर ये रोग जो हैं ये बढ़ते हैं और ये प्रजनन करते हैं, ये लगातार बढ़ते जाते हैं और अधिक मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो इन इनके प्रभाव से, इन रोगाणुओं के कारण बहुत सारे रोग हम में आ जाते हैं। तो हमारा शरीर शिक्षार्थियों इन रोगाणुओं को भी हमारे शरीर में जाने से रोकने का प्रयास करता है। अब किस तरह से ये शरीर जो है हमारा प्रयास करता है, त्वचा, हमारी जो स्किन है, हमारी त्वचा जो है, हमारा शरीर अगर एक किला है तो ये त्वचा जो है ये उसकी बाहरी दीवार है। यानी बाहरी दीवार, आप अगर आपने कोई किले देखे हैं और आप किलों के बारे में जानते हैं कि किस तरह से उनका निर्माण होता था, तो पहले बहुत ही ऊंची एक दीवार किले के चारों तरफ खड़ी की जाती थी और ये दीवार इतनी ऊंची और इतनी मजबूत होती थी कि कोई भी आक्रमणकारी अंदर नहीं घुस सकता था। तो यहां पर भी त्वचा का यही काम है। ये जो दीवार है ये हमारे शरीर की दो तरह से रक्षा करती है। पहले तो जो हमारी शरीर की नमी है उसको ये जाने से रोकती है और दूसरा वायु और कपड़ों आदि को छूने से जो हमारे ऊपर असंख्य रोगाणु हैं उन्हें ये बाहर ही रोके रखती है। लेकिन जो ये रोगाणु हैं ये बहुत ही शातिर होते हैं, ये तैयार रहते हैं कि कहीं पर भी शरीर अगर कटा फटा है तो ये वहां से घुस जाने का प्रयास करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है शिक्षार्थियों कि जब हम खूब रगड़ रगड़ के, खूब मल मल के जब हम नहाते हैं तो हमारे शरीर पर, विभिन्न अंगों पर जो रोगाणु बैठे होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो आपने देखा कि साफ रहने का, नियमित रूप से नहाने का कितना बड़ा योगदान है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में। ऐसे ही थोड़ी ना हमारी जो माँ है वो ये कहती है कि चलो चलो जल्दी से उठो और जल्दी से नहा लो, कोई बात नहीं आज छुट्टी है तो नहाना तो हर रोज है, आप जब छोटे होंगे तो आप जरूर जिद करते होंगे कि आज नहीं नहाना, कुछ लोगों को नहाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उन्हें ये बात बहुत अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए कि ये नहाने की क्रिया करके नहा कर आप अपने आप को बहुत सारे रोगाणुओं से मुक्त रखते हैं। इसीलिए नियमित रूप से स्नान करने का, बार बार हाथ धोने का, मुंह धोने का निर्देश दिया जाता है। तो ये बात हुई शिक्षार्थियों हमारी त्वचा की। अब हम बात करते हैं अपनी नाक के बारे में। जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे जो रोगाणु हैं हमारी नाक में चले जाते हैं, और नाक में जो रोएं हैं हमारे उन रोयों से, उन बालों से ये रोगाणु रुक जाते हैं, ये अंदर नहीं जा पाते हैं। और कुछ रोगाणु नाक के भीतर जो श्लेष्मा होता है उसमें चिपक कर फंस जाते हैं, और इस तरह का ही जो श्लेष्मा है वो फेफड़ों के भीतर की वायु नलियों में भी होता है, और हवा के साथ वायु के साथ आए हुए जो अगर कुछ रोगाणु आ भी गए हैं तो वो उस श्लेष्मा में चिपक जाते हैं। तो बलगम के रूप में फेफड़ों से बाहर जब ये श्लेष्मा निकलता है तो वो अपने साथ बहुत सारे रोगाणु भी बाहर फेंकता है। तो देखा आपने कि कितना हमारा कितना उपयोगी है हमारा शरीर, और किस ढंग से, कितने बढ़िया ढंग से वो अपने भीतर प्रवेश करने वाले रोगाणुओं को निकाल फेंकता है। तो अब बात करते हैं हमारा आहार किस तरह से कार्य करता है। जैसे हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं या दूध पीते हैं, तो उसमें भी आपने खाना रखा और आपने रखते ही आपने खाना खा लिया है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसमें भी कोई ना कोई रोगाणु जो है वो पहले मुंह में चले जाते हैं और फिर मुंह से आगे जो तो आपकी फूड पाइप है, जो आपकी आहार नली है, उसमें पहुंच जाते हैं। तो हमारे मुंह में जो लार बनती है, हमारा मुंह गीला रहता है ना, तो जो लार बनती है वो और कार्यों को करने के साथ साथ वो बहुत हद तक इन आहार नली में इधर गए हुए जो रोगाणु हैं उन्हें भी नष्ट कर देती है। और फिर भी अगर कोई रोगाणु आगे पहुंच गए तो आमाशय जो है अपने एसिड से, अपने अम्ल से उसको नष्ट कर देता है। और आपको इस एसिड का अनुभव शायद तब हुआ होगा जब आपका जो आपका पेट भरा हुआ है, और अगर आपका भरा हुआ पेट थोड़ा सा भी दबता है तो भोजन का कुछ अंश उल्टा चलकर मुंह में आ जाता है, आपको खट्टी डकार आ जाती है या आपको उल्टी हो जाती है, तो आपको एकदम लगता है कि खट्टा खट्टा है मुंह में कुछ, तो ये आपके पेट का एसिड है जो आप अनुभव करते हैं कि ये किस तरह का पदार्थ हमारे मुंह में है। तो शिक्षार्थियों, शरीर की जो सुरक्षा है उसमें पहला योगदान किसका हुआ? हमारी त्वचा का, नाक का, फेफड़ों का, मुंह और आहार नली की भीतरी परतों का होता है, जो रोगाणुओं को टिश्यूज में, ऊतकों में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो अगर ये सभी हमारी त्वचा, नाक, फेफड़े, मुंह, यहाँ पर कहीं भी कोई किसी तरह की चोट होगी, कुछ भी कटा फटा होगा, या हमने अपना ध्यान नहीं रखा है, हमने अच्छा भोजन नहीं किया है और ये सब कमजोर हैं, तो रोगाणु शरीर में पहुंच जाते हैं, शरीर के ऊतकों में पहुंच जाते हैं और ये बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही अति सूक्ष्म होते हैं वायरस। ये जो वायरस हैं वो पतली त्वचा और अंदर की जो सारी परतें होती हैं उसमें उनको भेद कर घुस जाते हैं। तो जैसे ही ये घुसते हैं शरीर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी एक्टिव हो जाती है, वो भी सक्रिय हो जाती है। उसको लगता है कि जिस तरह से किले पर आक्रमण हुआ, कुछ आक्रमणकारी आ गए, जैसे पहले समय में ऐसा होता था, उस तरह से शरीर भी एकदम से एक्टिव हो जाता है कि नहीं, शरीर पर मुझ पर आक्रमण हुआ है तो हम उसका मुकाबला करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो शरीर है वो संक्रमित हो जाता है। कुछ जो संक्रमण होते हैं वो किसी खास अंग पर होते हैं, पूरे शरीर में नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा हाथ कट गया है और या फिर मैंने अपने हाथ पर बहुत जोर से कुछ ज्यादा ही खुजली कर दी है, तो क्या होगा कि वहां पर कुछ पहले से ही कुछ रोगाणु जमा होंगे और हवा छूने से वो रोगाणु भीतर प्रवेश कर जाते हैं। अब ये जो रोगाणु हैं ये हमारे ऊतकों को खाते हैं और खुद पनपते हैं और फिर मल्टीप्लाई करने लगते हैं, प्रजनन करते हैं और ज्यादा इनकी संख्या बढ़ने लगती है। हमारा शरीर भी इनके प्रति निष्क्रिय नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ रिएक्ट नहीं करेगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। जो हमारे रक्त की, जो हमारे खून की जो श्वेत कणिकाएं होती हैं वो सतर्क हो जाती हैं और रोगाणुओं में से निकले कुछ रासायनिक पदार्थों से उन्हें संकेत मिल जाता है और वे धावा बोल देती हैं। तो इस तरह से जो श्वेत कणिकाएं हैं वे संक्रमित स्थल पर, उस अंग पर जल्दी पहुंच जाती हैं और वे क्या करती हैं कि वे रोगाणु को संक्रमण स्थल पर जल्दी से पहुंचाने के लिए आसपास की जो रक्त नलियां हैं वो फूल जाती हैं और वहां पर जब ज्यादा रक्त पहुंच जाता है तो जो इन्फेक्टेड पार्ट है, जो संक्रमण स्थल है, वहां जो है वो त्वचा बहुत ही लाल और कुछ सूजी हुई सी महसूस होती है और अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको गर्म महसूस होगी। तो इस तरह से ये श्वेत कणिकाएं लड़ती हैं और इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, ये जो संघर्ष होता है रोगाणुओं का और श्वेत कणिकाओं का, उसमें बहुत अधिक टकराहट रहती है। अगर हम अच्छे से नहीं खाते हैं, हमारी जो श्वेत कणिकाएं हैं बहुत स्वस्थ नहीं हैं, तो वे रोगाणुओं से जीत नहीं पाती हैं और हमारा जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाता है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हमारा शरीर कार्य करता है। इस लेख में आगे बताया गया है कि अगर पहली बार जब आमना सामना हुआ श्वेत कणिकाओं का और रोगाणुओं का और उस समय अगर ये रोगाणु समाप्त नहीं हुए तो ये रोगाणु फिर हमारे ऊतकों के तरल में, लिक्विड में पहुंच जाते हैं और ये फिर जाकर रक्त में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत अधिक कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो प्रतिक्रिया करता है। अब जैसे आपको कहीं पर बहुत अधिक अंदर ही अंदर गांठ हो जाती है, इस तरह का आपको बगल में इस तरह की कोई गांठ आपको महसूस होती होगी कि ये गांठ एकदम से बन गई, तो एक तरह से वो रिएक्ट करती है हमारी बॉडी और वहां पर इस तरह की गिल्टी या गांठ बन जाती है। तो ये गिल्टी तभी बनती है शिक्षार्थियों जब हमारे हाथ या पैर में कोई फोड़े फुंसी जैसा संक्रमण हो गया हो, और जैसे हमारे गले की टॉन्सिल्स भी इस तरीके की ही गिल्टियां हैं, जो गले में जब इन्फेक्शन होता है तो वो फूल जाती हैं, एकदम से रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों इस तरह से ये शरीर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कार्य करती है। कई बार इस तरह ये जो सुरक्षा व्यवस्था है इसमें कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की अगर कमी आ जाती है तो फिर हमें कोई ना कोई रोग घेर लेता है। इन सब रोगों से बचाव के लिए क्या किया जाए? सबसे जो उपयोगी है जिसके बारे में हम जानते हैं वो ये है कि हम अलग अलग उम्र पर टीके लगवाते हैं। तो आप सबको पोलियो का, चेचक का, टेटनस का, इन सब का टीका वैक्सीनेशन आपकी हुई होगी। तो ये सब टीके एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं कि जो दुर्बल कर दिए हैं रोगाणु हमारे शरीर में या उनका जो हल्का किया गया विष, हमारे जो शरीर की जो कणिकाएं हैं वो उनसे लड़ती हैं और उसके बाद ये रोगाणु कमजोर हो जाते हैं, तो इन्हें जानबूझकर व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है, इन्हें प्रवेश दिया जाता है। तब व्यक्ति का शरीर उन रोगाणुओं या उस विष से जूझता है और उसके प्रतिपिंड बनाने में लग जाता है, और उसके बाद जब कभी रोग का वास्तविक संक्रमण होता है तब पहले से ये मौजूद जो प्रतिपिंड है वो रासायनिक हथियार के रूप में कार्य करता है और शरीर को रोग से बचा लेता है। तो इस तरह से ये शरीर कार्य करता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को किसी धूल वाली जगह पर जाने से एकदम से छींके आती हैं, किसी को परफ्यूम से भी छींके आती हैं, उनकी आंख से नाक से पानी बहने लग जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को कोई भी कुछ अलग कुछ वस्तु विशिष्ट खाने से उन्हें दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह की परेशानियां होती हैं। कुछ लोगों को कोई एक खास दवा खाने से भी परेशानी हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि इस व्यक्ति को इस वस्तु से एलर्जी है। तो एलर्जी कैसे पैदा होती है? एलर्जी पैदा होती है ऐसे प्रोटीनों से जो शरीर के लिए सदा पराए बने रहते हैं, कभी हमने वो वस्तु खाई ही नहीं या शरीर, तो शरीर भूल जाता है, शरीर उसको स्वीकार ही नहीं करता है। जब वो बिल्कुल भूल गया है तो फिर उसके बाद वो अपरिचित बने रहते हैं ये प्रोटीन, और फिर अगर ये इस तरह के प्रोटीन खाए तो फिर शरीर उसे हटा देता है, शरीर उसे स्वीकार नहीं करता है। तो इस तरह से शिक्षार्थियों हमारा ये जो हमारी जो व्यवस्था है हमारे शरीर की वो इस तरह से काम करती है। जैसे शरीर में कुछ पित्ती निकल आती है, कुछ एकदम से ऊपर कुछ उभर आता है, हमारी त्वचा सूजन हो जाती है या सांस फूलता है या चेहरा लाल हो जाता है या एकदम से सांस लेने में कठिनाई होने लग जाती है, तो ये सब जो है एलर्जी के उदाहरण है। इन उदाहरणों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से हमारा शरीर जो है वो प्रतिक्रिया करता है। तो शिक्षार्थियों ये सारी बातें बताने का उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि आप अपना बहुत अच्छे ढंग से ध्यान रखिए। आपका शरीर तो अंदरूनी तौर पर सशक्त है ही, लेकिन उसको लगातार आपको सशक्त रखना है, पौष्टिक खाना है, साफ रहना है और कसरत करनी है और अपना ध्यान रखना है। धन्यवाद। नमस्कार।